23 नवंबर दिन भर, दिन सोमवार, मैं हूँ दिव्या आर्य। आज शुरू हो रही है बीबीसी की विशेष सीरीज 100 विमेन,
और आज कार्यक्रम की अतिथि संपादक हूँ मैं तस्लीमा नसरीन।
खबरों में, बिहार में महिलाओं ने खूब किया वोट, पर कैबिनेट में पहुंची सिर्फ दो।
इच्छा तो होती ही है और हम लोग काम किए, पार्टी के लिए भी काम किए हैं, और अभी ना उम्मीद नहीं है।
ब्रिटानी प्रधानमंत्री कैमरन ने किया आईएस के खिलाफ फ्रांस की मदद बढ़ाने का ऐलान, और मिलवाएंगे महाराष्ट्र की अनचाही लड़कियों यानी नकुशा से।
मुझे घर में और मेरे आसपास के लोग रहते हैं वो भी मुझे नकुशा नाम से ही बुलाते थे।
सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वादा किया है कि सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन फ्रांस की और अधिक मदद करेगा। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ पेरिस में उन इलाकों का दौरा किया जहां चरमपंथी हमले हुए थे। प्रधानमंत्री कैमरन ने यह भी कहा कि वे सीरिया में आईएस के खिलाफ हवाई हमले तेज करने के फ्रांस के फैसले का समर्थन करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने इस बात की पुष्टि की कि मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाई में फ्रांसीसी विमान वाहक चार्ल्स डिगाल को भी शामिल किया जाएगा। बेल्जियम में पुलिस का कहना है कि उन्होंने ब्रसल्स और लीज में 5 और लोगों को चरमपंथ के शक में गिरफ्तार किया है। कल से कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सलाह अब्दुस्सलाम, जो पेरिस हमलों में कथित तौर पर शामिल था, वह अब भी फरार है। ब्रसल्स में आज भी दुकानें, स्कूल और मेट्रो सेवा बंद रही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि शहर में हालात जल्द से जल्द सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत प्रशासित कश्मीर में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोग मारे गए हैं। यह हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रियों को वैष्णो देवी ले जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। इसराइली पुलिस के मुताबिक यरूशलम के मशहूर बाजार में 2 फलस्तीनी लड़कियों ने भीड़ पर चाकू से हमला किया। दोनों लड़कियों को गोली मार दी गई। इनमें से एक की मौत हो गई है। इस हमले में 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मिकी रोजनफेल्ड इसराइली पुलिस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया, पुलिस ने यरूशलम के एक बाजार में चरमपंथी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। 2 महिला चरमपंथियों ने कैंचियों से एक 27 वर्षीय इसराइली युवक को घायल कर दिया। दोनों चरमपंथी महिलाओं को गोली मार दी गई, जिनमें से एक की मौत हो गई है। दूसरी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल यरूशलम में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। ये थे मिकी रोजनफेल्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। खबर है कि सीरिया के सरकारी बलों ने देश के पश्चिम में आईएस के खिलाफ लड़ाई में बढ़त हासिल की है। सरकारी मीडिया और लड़ाई पर नजर रखने वाले संगठनों का कहना है कि सेना ने रूसी हवाई हमलों की मदद से मीन और हवारीन शहर पर कब्जा कर लिया है। दोनों शहर राजधानी दमिश्क को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण हाईवे पर स्थित हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के दौरे पर हैं। उन्होंने ईरान के नेता आयतुल्लाह अल खमेनी से बातचीत की है। अनुमान है कि यह बातचीत सीरिया में हो रहे युद्ध पर केंद्रित रही। ईरान और रूस दोनों ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। हाल के दिनों में रूस सीरिया में अपने विरोधियों पर तेज हवाई हमले कर रहा है। इनमें आईएस के कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। ईरान सीरियाई विद्रोहियों के खिलाफ जमीनी लड़ाई को संयोजित करने में मदद कर रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूँ दिव्या आर्य। आज के दिन भर कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मिलवाते हैं हमारी अतिथि संपादक तस्लीमा नसरीन से। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं, कई सम्मानों से नवाजी गई तस्लीमा ने बांग्ला में 40 किताबें लिखी हैं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तस्लीमा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से फेलोशिप भी दी गई है। वैसे तो तस्लीमा मानवाधिकारों पर बहुत लिखती हैं, पर उनके काम में महिलाओं की प्रताड़ना और धर्म के पितृसत्तात्मक होने की आलोचना साफ निकल कर आती है। इसी वजह से तस्लीमा के खिलाफ कई फतवे जारी किए गए हैं, और बांग्लादेश, जहां वो पैदा हुई, पली बढ़ी, 1994 में उन्हें वहां से जबरन जाने को कह दिया गया और आज तक वो नहीं लौट पाई हैं। तस्लीमा, दिल्ली के हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
तस्लीमा, आज आपने हमारे दफ्तर में कई घंटे गुजारे, आप हमारी अतिथि संपादक हैं, आपने सब खबरों पर अपनी राय रखी और जैसा आप जानती हैं कि 100 वुमेन की जो हमारी ये खास पेशकश आज हम शुरू कर रहे हैं उसमें ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि मीडिया में सीनियर पोजीशंस एडिटर के ओहदे पर बहुत कम महिलाएं हैं, सिर्फ 1/4 और खबरों में भी जो खबरें आती हैं उसमें भी फोकस में सिर्फ 1/10 यानी सिर्फ 10% 10% खबरों में महिला फोकस होती हैं। ये जो चलन है, ये जो ट्रेंड है, क्या ये आपको परेशान करता है?
सॉरी आई कांट स्पीक हिंदी वेल सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश। ये यस आई रियली आई एम डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस रियलिटी बट यू नो वी लिव इन misogynistic patriarchal society. Women don't have access to education, to politics and many other places. It is true that women are not many in media, and not only in media, in many other places. Women are treated as sexual objects, as childbearing machines and slaves. So women are treated as second-class citizen in many countries, especially in the Indian subcontinent. So we should fight for women's rights and freedom. Women should get equality. Otherwise, if we think that women will be treated equally and women will get, 50% women will be in the media and women's positive news about women would come to media, then I think that it will not happen until women gets equality in society. Mm. So it is everybody's duty to fight for women's rights. Mm.
बहुत शुक्रिया तस्लीमा। बहुत ही साफ कोई से तस्लीमा ने कहा कि जो हमारा समाज है वो ही इतना पितृसत्तात्मक है जहाँ पर सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति सभी में महिलाओं को बहुत मौके नहीं मिलते हैं बल्कि उनको बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है, खासतौर पर दक्षिण एशिया में, या उनको काम का या वासना का एक केंद्र का एक ऑब्जेक्ट माना जाता है और उन्हें दूसरे दर्जे के सिटीजन्स, दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता है और इसका रास्ता यही है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की जाए। अचानक से पत्रकारिता में या और जो फील्ड्स हैं उसमें 50% महिलाएं नहीं आ जाएंगी। तो तस्लीमा की इसी बात को मैं आगे लेके जाऊंगी हमारी विशेष खबरों के जरिए, लेकिन ये भी बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हम आगे चर्चा करेंगे पेरिस में जो ब्रितानी प्रधानमंत्री ने आज बयान दिया है, लेकिन क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित है तो बात जारी रखते हैं महिलाओं की। महिलाओं का जो कम प्रतिनिधित्व है वो खबरों की दुनिया में ही नहीं है बल्कि राजनीति में भी है जैसा हम कह रहे थे। और अगर चर्चा करें बिहार की तो बिहार के चुनाव में इस बार महिलाओं ने आगे बढ़कर मतदान किया, करीब 59%, लेकिन जब कैबिनेट बना तो 28 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल में महज 2 महिलाओं को ही जगह मिली। क्या है इसकी वजह और भविष्य में क्या ये बदलेगा, इस पर सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
क्या आपको किसी ने बताया कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा प्रतिशत में वोट दिया था? आंकड़े और हकीकत वाकई में कान खड़े करने वाली है, क्योंकि सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 7.14 है और ये तब है जब बिहार प्रदेश चुनावों में पुरुष मतदाताओं की संख्या 54% के करीब रही जबकि 59% के करीब महिलाएं वोट देने के लिए घरों से बाहर निकली। लेकिन इसके बावजूद मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह न मिलने से थोड़ी हताशा भी दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनी गई विधायक प्रेमा चौधरी ने थोड़ा कतराते हुए जवाब तो दिया।
ये तो हम यही कहेंगे कि तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नीतीश जी है, इन्हीं से आप लोग सवाल करते तो ज्यादा बेटर रहता
जी। लेकिन बतौर एक महिला विधायक के तौर पर जाहिर है कि
मायूसी तो होगी। देखिए, इच्छा तो होती ही है और हम लोग काम किए, पार्टी के लिए भी काम किए हैं और अभी ना उम्मीद नहीं है, अभी जो बाकी है हमारा और हमारे दल में खास करके।
जी, जो अभी विस्तार होना बाकी है।
हाँ, विस्तार होना बाकी है।
वैसे अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एक बार लगेगा कि बिहार में नतीजे भी महिलाओं के ही पक्षधर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 151 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 15 टिकट महिलाओं को दिए और 4 की जीत हुई। लालू की आरजेडी ने तो 101 में से 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया और सभी अपना चुनाव जीत गईं। नीतीश की जदयू ने भी 10 महिलाओं को टिकट दिया और उनमें से 9 को जीत हासिल हुई। और तो और कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली महिलाओं में से 4 विजयी साबित हुई। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस को उम्मीद थी कि नीतीश ज्यादा महिलाओं को आगे लाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई अफसोस भी नहीं।
हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी प्रोग्राम्स नीतीश कुमार ने लॉन्च किए थे महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जिनकी आवाज हम अभी तक रहे थे, खास तौर से पंचायती राज की जो प्रतिष्ठान है उसमें, और खास तौर से जो उन्होंने लड़कियों के शिक्षा का काम किया है वो बहुत ही उम्दा है। और नीतीश कुमार ऐसे ही नेता निकले हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर महिलाएं कैबिनेट में नहीं होंगी। हालांकि हमें उम्मीद थी कि शायद वो और महिलाओं को आगे लाएंगे,
लेकिन अदिति चेताती भी हैं कि चूंकि ये गठबंधन सरकार है इसलिए भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती।
लालू जी ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उससे हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है महिलाओं की स्टैंडिंग में या स्टेटस में जब वो मुख्यमंत्री थी। तो कुल मिला के हमें डर लगना चाहिए उस तरह की सोच से, न कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आरजेडी है या कोई और है, उससे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
बहरहाल नीतीश मंत्रिमंडल में जहां पुराने दिग्गज राजनेताओं का बोलबाला है, वहीं जदयू और राजद की एक एक महिला विधायकों को भी शामिल किया गया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आरजेडी विधायक प्रेमा चौधरी की टिप्पणी सटीक बैठती है। उन्होंने कहा, नीतीश जी पर बिहार की महिलाओं का बहुत भरोसा है, इसी वजह से इस बार वोट भी मिला है। आप समझ ही गए होंगे कि गेंद अब किसके पाले में है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
तो महिलाओं पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी तस्लीमा, और आगे हम सुनवाएंगे, जैसा आपसे हमारी पहले चर्चा हुई, महाराष्ट्र की उन लड़कियों के बारे में जिन्हें अनचाहा मानकर नकुशा कहा जाता है, और उस पर आपसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन अब खबर यूरोप से। ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने धमाकों के घटनास्थल का दौरा कर कहा है कि वो चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए फ्रांस का जोर शोर से समर्थन करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अलग अलग देशों से भी इस मदद के लिए आगे आने की अपील की है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी जानकारी के सार के साथ अमल चौधरी।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि वो कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई में उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति ओलांद के साथ इस बात पर भी सहमत हैं कि सीरिया से आने वाले हमलावरों से निपटने के लिए मुहिम छेड़नी होगी। एक सामूहिक प्रेसवार्ता के दौरान कैमरन ने कहा,
The United Kingdom will do all in our power to support our friend and ally France to defeat this evil death cult. Today, François and I, President Hollande and I have discussed how
France की मदद करने के लिए ब्रिटेन की क्षमता में जो कुछ भी है वो हम करेंगे। आज मैंने और राष्ट्रपति ओलांद ने इस विषय पर भी चर्चा की है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। इसमें दो बातें हैं, पहली कि हम किस तरह से आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम सभी को इससे खतरा है। ऐसे में हम सभी इस तरह का डेटा और इससे जुड़ी जरूरी चीजें साझा करेंगे। दूसरी बात ये कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आने वाले सभी देशों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो आपस में अधिक से अधिक जानकारी साझा करें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम यूनियन से बाहर के देशों से अधिक जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से जानकारी नहीं ले पाते।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने भी ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा,
Pour la protection de notre territoire et de nos populations, nous allons encore davantage
अपने देश और लोगों को बचाने के लिए हम जानकारी साझा करने और उसके तरीकों को बेहतर करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन यूरोपीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जहां तक हमारी बात है तो हम सीरिया में आइसिल पर हमला करते रहेंगे। हम चरमपंथियों के उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे, और हमारा युद्धक विमान जल्दी ही उस इलाके में पहुंचने वाला है जिसके बाद उनके खिलाफ हमारे हमले और तेज हो जाएंगे।
फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के शब्द। पेरिस में हुए हमले में करीब 130 लोग मारे गए थे, जिसके बाद फ्रांस ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए थे।
ये थे अमल चौधरी। अब वापस रुख करते हैं भारत का, जहां पंजाब में सत्ताधारी अकाली दल और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने बठिंडा शहर में रैली निकाली। वहीं सिख समुदाय के कट्टरपंथी गुटों ने दो जत्थेदारों की रिहाई के लिए राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था। पंजाब की गर्माती राजनीति पर रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर से कांग्रेस में उनके नेताओं पर हमला बोल उन पर पंजाब का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। बठिंडा में आयोजित सद्भावना रैली में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब का माहौल खराब कर रही हैं। सुखबीर सिंह बादल ने तो गांधी परिवार को सिखों का दुश्मन ही बता डाला। उनका कहना था,
कांग्रेस अपने आप केंद्रीय देश की पुरानी पार्टी है, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होंगे जिला कनेडा विच खालिस्तान का हेडक्वार्टर किया जाता है।
शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने पंजाब भर में इस तरह की 5 रैलियां करने का फैसला लिया है। आज बठिंडा में हुई पहली सद्भावना रैली में मुख्यमंत्री बादल सहित कई नेता शामिल थे, जिनमें हरसिमरत कौर बादल, नरेश गुजराल और पंजाब भाजपा के अध्यक्ष कमल शर्मा शामिल थे। अकाली दल के प्रवक्ता हरचरण सिंह बैंस ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए आज की रैली को सफल बताया। उनका कहना था,
मेन बात ये थी कि दिस रैली वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू डीस्टेबलाइज पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन द स्टेट। जो कुछ दिनों से पंजाब में सद्भावना, आपसी सद्भावना जो है पंजाबियों की, उसको खराब करने की कोशिशें हो रही थी लग रहा था, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने उत्साह और बड़े भारी तादाद में उमड़कर एक मैंडेट दिया है।
बादल द्वारा कांग्रेस पर किए गए हमले का जवाब देते हुए पंजाब प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं,
देखो मेरा कहना है कि दिस इज प्रोपेगेंडा दैट दे हैव बीन लॉन्चिंग फॉर द फेलियर, जो इनकी अपनी नाकामयाबी उसका सारा का सारा ये ऑपोजिशन पर और विशेष तौर पर कांग्रेस पर ये बात जानना चाहते हैं। देखो एक बात क्लियर है, 9 साल में ये रैमी से पंजाब को लूटा है, पंजाब के लोगों को जस्टिस नहीं मिला, वो फार्मर हो, खेत मजदूर हो, हमारा नौजवान बेरोजगार भाई हो, या किसी सेक्शन से भी तलक रखने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट हो, दुकानदार हो, सभी आज ये महसूस करते हैं ठगे ठगे।
और बाजवा द्वारा आज की रैली में आए लोगों को कैप्टिव क्राउड कहने पर हरचरण बैंस ने बाजवा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, यूं तो अकाली दल और भाजपा ने इस रैली को सद्भावना रैली का नाम दिया है, पर वहां आए हुए नेताओं ने इसका राजनीतिक फायदा लेने का कोई भी अवसर आज नहीं छोड़ा। बीबीसी हिंदी के लिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अब अपना विरोध जाहिर करने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। दरअसल भारत में हो रहे 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्मों को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, इस डर से कि वो उस कार्यक्रम में विघ्न पैदा करेंगे। तो छात्रों ने अब कल यानी मंगलवार और फिर बुधवार को गोवा के पणजी में ही एक समानांतर फेस्टिवल का आयोजन किया है। पूरी जानकारी के साथ विनीत खरे।
FTII छात्रों के जारी प्रदर्शन को 140 दिन पूरे होने को हैं और गजेंद्र चौहान को FTII गवर्निंग काउंसिल का प्रमुख बनाए जाने के सरकारी निर्णय का छात्रों का विरोध जारी है। इस कारण अधिकारियों ने गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में छात्रों की फिल्मों को न दिखाने का निर्णय किया था। छात्रों के लिए आम लोगों तक पहुंचने के लिए ऐसे मौके बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए गोवा में ही एक समानांतर फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया। FTII छात्र अजयन आदत,
2010 में जब इंस्टीट्यूट का गोल्डन जुबली हुआ, उस साल से हर इसी में इंस्टीट्यूट के लिए, इंस्टीट्यूट फिल्म्स के लिए एक सेपरेट पैकेज होता है, और दूरदर्शन का जो लोकसभा चैनल है उसमें हमारा डिप्लोमा फिल्म्स के लिए एक स्पेशल स्लॉट है, हर संडे वो दिखाता है। ये सब फिल्म्स कोई देखते नहीं है, देखने के लिए किसी को वैसे एक प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जो टैक्स पेयर्स है उनको भी पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट्स अंदर कर क्या रहे हैं, ये लोग क्या बना रहे हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म फिल्म फेस्टिवल ही है, और मतलब यशराज फिल्म समाधि डिप्लोमा खरीद के रिलीज नहीं करने वाला है।
छात्रों का आरोप है कि पुणे में पुलिस से उनकी सुरक्षा को खतरा है। अजय नदत,
इनॉग्रल सेरेमनी हो रहा था, उसके अंदर हमारे दो साथी प्रोटेस्ट किए थे, खिसले और शुभम, वो दोनों एक स्टूडेंट्स है FTII के, करंट स्टूडेंट्स नहीं है। वो अपना ओपिनियन वहां पे रखा, उनको पुलिस ने पकड़ के लेके गया, उनको मैनहैंडल किया, गलत चार्जेस पे केस फाइल किया है कि हम लोगों के ऊपर यहाँ पे पुणे में केस चल रहा है और हम शहर छोड़ के नहीं जा सकते हैं।
प्रतीक वत्स FTII के पूर्व छात्र हैं और छात्रों के समर्थन में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार को लौटा चुके हैं। वो गोवा में इस समानांतर फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से जुड़े हैं।
FTII की स्टूडेंट्स फिल्म का एक पैकेज दिखाया जाएगा जो जनरली अगर यहाँ स्टूडेंट सेक्शन होता तो उसमें आती है, जो पिछले कुछ सालों की मतलब सेकेंड ईयर की एंड फिल्म्स और थर्ड ईयर की एंड फिल्म्स दिखा रहे हैं हम लोग। और कुछ फिल्में ऐसी दिखा रही हैं जो एक्स स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, कुछ जैसे हम में से कुछ लोगों ने जिन्होंने अवार्ड्स वापस किए थे उन फिल्मों को दिखाया जा रहा है। एफटीआई स्ट्राइक के दौरान जो स्टूडेंट्स ने काम किया था ना उसमें जितनी तरह की फिल्म बनी थी वो सब दिखा रहे हैं। बेसिकली पॉइंट बीइंग कि हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ डिसरप्ट करने ही नहीं आए। वी अंडरस्टैंड व्हाट द सैंक्टिटी ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल इज, वी आर फिल्म मेकर्स एंड फिल्म स्टूडेंट्स एंड यू नो वी रियली टेक दिस इज द मोस्ट सीक्रेट थिंग फॉर अस।
प्रतीक वत्स का कहना है कि हालांकि उन्हें गोवा में स्थानीय संगठनों का समर्थन मिल रहा है, इस तरह के आयोजन के लिए धन एकत्रित करना आसान नहीं है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
और आज सोमवार है तो आपको जरूर इंतजार होगा आपकी चिट्ठियों का। मायूस ना हो, हम अगले कार्यक्रम घटना चक्र में उन्हें शामिल करेंगे। पर अब हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसके लिए बीबीसी संवाददाता स्वाति बख्शी गई पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में। ये कहानी है उस इलाके में रहने वाली उन बच्चियों की जिन्हें अनचाहा मानते हुए उनके माँ बाप नाम ही नहीं देते बल्कि नाकुशा बुलाते हैं। एक सरकारी पहल से इन बच्चियों को नाम दिए गए हैं, पर नाम और गुमनामी के बीच कैसी है इन बच्चियों की असल जिंदगी, यही टटोलती है ये रिपोर्ट।
मेरा नया नाम निकिता है और मेरे घर में मुझे सब में निकिता नाम से बुलाते हैं। मेरे घर में मुझे भाई नहीं है, मुझे दो बहनें हैं।
पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा जिले के गांव में रहने वाली निकिता 11 साल की है, लेकिन ये नाम उसे 11 बरस पहले उसके माता पिता ने नहीं दिया। 4 साल पहले 2011 में जिला परिषद के एक नामकरण कार्यक्रम में उसे ये नाम दिया गया। निकिता को पहले नकुशा कहा जाता था, जिसका मतलब है अनचाही। बेटे की चाह रखने वाले माँ बाप अक्सर तीसरी या चौथी बेटी होने पर उसे नकुशा कहते हैं, ताकि इसके बाद अगर घर में बच्चा हो तो लड़का हो और किसी बेटी का मुंह ना देखना पड़े। साल 2011 में सातारा के जिला परिषद ने लड़कियों के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलने के लिए उन्हें नाम देने की रस्म अदा करने का फैसला किया। जिले में नकुशा कही जाने वाली 285 लड़कियों की पहचान की गई और उनमें से 265 को नाम दिए गए। पर क्या नाम बदलने से लड़कियों की जिंदगी पर कोई असर पड़ा है? 4 साल पहले नकुशा से निकिता बनने की बात बड़े ही उत्साह से बताते हुए 11 साल की ये बच्ची कहती है,
मैं छोटी थी ना, मुझे घर में और मेरे आसपास के लोग रहते हैं वो भी मुझे नकुशा नाम से ही बुलाते थे। पहले मुझे नकुशा नाम से बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मेरा नामकरण किया ना, तब मुझे निकिता नाम दिया गया है और तब से मुझे नाम पसंद है।
जिन 265 लड़कियों के नाम बदले गए उनमें से ज्यादातर की या तो शादी हो चुकी है या फिर वो पढ़ने के लिए आसपास के जिलों में चली गई हैं। 13 साल की एक और लड़की जिसे 4 साल पहले ऐश्वर्या नाम दिया गया बहुत ही भावुक होकर बताती है,
माझे पहिले नाव नकुशा होते, आम्ही सातारामध्ये नाव बदलायला गेलो होतो।
मैं अपनी माँ के साथ सतारा में नाम बदलने गई थी, फिर मेरा नाम ऐश्वर्या रखा गया। नकुशा नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं रोज अपने गांव से पैदल चलकर स्कूल जाती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में गरीबी है। अगर आर्थिक मदद मिली तो पढ़ाई पूरी करूँगी और डॉक्टर बनूंगी।
तो क्या ये माना जाए कि नाम बदलने से लड़कियों के लिए सोच बदलने की उम्मीद वाकई कारगर साबित हुई है? नकुशा नामकरण की मुहिम का हिस्सा रही महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली वकील वर्षा देशपांडे कहती हैं कि नाम रखने का मकसद मानसिकता में बदलाव की तरफ एक कदम था, लेकिन वो काफी नहीं है।
एक नकुशी नाम रखना तीसरी चौथी के लिए अपने नसीब को कोसना और लड़की को जिंदगी में आने के लिए देना, ये भी हम चाहते कि चलो कुछ हद तक नेगेटिवली क्यों ना हो, स्टिल कल्चर्ड है ये लोग, क्योंकि अनकल्चर्ड वो है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पे लड़कियों को गायब कर रहा है। तो इट्स अ अटैक ऑन वीमेन रेस, और इसलिए हम लोग करीबन 49 टाइम महाराष्ट्र में डेकॉय ऑपरेशन किए। जब गर्भ का लिंग बता रहे थे तब हमने रेड हैंडेड करीबन 49 टाइम्स अराउंड 60 डॉक्टर्स को हमने पकड़ा। अलग अलग महाराष्ट्र के कोर्ट्स में इनके कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं।
जिला प्रशासन अपनी नामकरण की इस मुहिम को लेकर क्या सोचता है? क्या उसे लगता है कि ये कार्यक्रम सफल रहा है और इसका कोई परिणाम हुआ है? सातारा के जिलाधिकारी अश्विन मुद्गल मानते हैं कि नामकरण सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत अहम साबित हुआ है।
As far as your question is concerned that whether these kind of social ceremonies,
उस रस्म से जो संदेश गया और उसके बाद हमने जन्म से पहले भ्रूण की जांच नियंत्रित करने वाले कानून का बहुत सख्ती से क्रियान्वयन किया। हमने करीब 100 सोनोग्राफी सेंटर बंद कराए हैं और लगातार चेकिंग होती है।
प्रशासन कहता है कि इन सभी लड़कियों के नाम स्कूलों में भी बदले जा चुके हैं, जबकि वर्षा देशपांडे कहती हैं कि उनकी जानकारी के मुताबिक कई स्कूलों में नाम बदले नहीं गए हैं। नकुशा के बजाय किसी नाम से बुलाया जाना इन लड़कियों के लिए अहम है। सामाजिक संदर्भ में उसके सकारात्मक असर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अहम ये सवाल भी है कि क्या नाम बदल दिए जाने से लड़कियों के हालात बदल कर उनके लिए नए अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। स्वाति बख्शी, बीबीसी न्यूज, सातारा, महाराष्ट्र।
तो तस्लीमा, आपने सुना कि कैसे सरकार ने एक कदम उठाया ताकि ये जो समाज में लड़कियों को ऐसे अनचाहा बता के ट्रीट करना, नाम न देना, इसको काउंटर किया जा सके, इसको कम किया जा सके। क्या ये सही तरीका है?
या इट इज़ गुड दैट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू चेंज एंटी वुमेन ट्रेडिशन, बट इट्स नॉट इनफ। एवरीवन, बोथ मैन एंड वुमेन शुड हेल्प our misogynistic patriarchal society to become an equal society.
तस्लीमा ने हमें कहा कि ये तो अच्छा है कि सरकार इस तरह की पहल उठ कर रही है बदलाव लाने के लिए, लेकिन ये नाकाफ़ी है। महिलाओं और पुरुषों, औरतों और मर्दों को, दोनों को ही कोशिश करनी होगी कि जो हमारा गैर बराबरी वाला समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें बदलाव आए, और ये बदलाव अंदर से आने की ज़रूरत है। और तस्लीमा, ये जो आप अंदर से बदलाव की बात कर रही हैं, सेल्फ, इस पर आपने बहुत प्यारी कविता भी लिखी, लड़की तुम बढ़ो, जिसमें आप, इसमें आपने अभी तो खैर पुरुषों और औरतों दोनों की बात की, पर उस कविता में आप खास तौर पर लड़कियों से अपने अंदर से जागने की बात करी हैं, उसकी कुछ लाइनें आप हमें सुनाएंगी?
ओ मे शोनो, तुम्हें बोले छे आस्ते, बोले छे धीरे, बोले छे कथा ना, बोले छे चुप, बोले छे बसे थाको, बोले छे माथा नोआओ, बोले छे कांदो।
हिंदी में अगर मैं आप श्रोताओं को बताऊं तो लड़की तुम बढ़ो शीर्षक से इस कविता में तस्लीमा कहती हैं, उन्होंने कहा आराम से रहो, कहा शांत रहो, कहा बोलना बंद करो। तुम्हें इसके जवाब में क्या करना चाहिए? तुम्हें अब खड़ी हो जाना चाहिए, एकदम सीधी खड़ी, जोर से बोलो, चीखो। तुम्हें इतनी तेज चीखना है कि वो छुपने की जगह ढूंढे, वो कहेंगे तुम बेशरम हो। जब तुम ये सुनो बस हंसो। जब वो तुम्हें हंसते हुए सुनेंगे तो वो चिल्लाएंगे और कहेंगे तुम एक वैश्या हो। जब वो ऐसा कहें बस अपने हाथ अपनी कमर पर रखो, सीधे खड़े हो और बोलो हाँ, हाँ हूं मैं एक वैश्या। वो हैरान रह जाएंगे, अवाक होकर तुम्हें घूरेंगे, वो इंतजार करेंगे कि तुम और बोलो, और ज्यादा बोलो। उनमें जो मर्द होंगे वो शर्म से लाल हो जाएंगे और उनके पसीने छूट जाएंगे। उनमें जो औरतें होंगी वो सपने देखेंगी कि तुम्हारी तरह वैश्या बन पाए। और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वादा किया है कि सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन फ्रांस की और अधिक मदद करेगा। बेल्जियम में पुलिस का कहना है कि उन्होंने ब्रसल्स और लीज में 5 और लोगों को चरमपंथ के शक में गिरफ्तार किया है। कल से कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत प्रशासित कश्मीर में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोग मारे गए हैं। ये हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रियों को वैष्णो देवी ले जा रहा था। इसराइली पुलिस के मुताबिक यरूशलम के मशहूर बाजार में 2 फलस्तीनी लड़कियों ने भीड़ पर चाकू से हमला किया, दोनों लड़कियों को गोली मार दी गई। सीरिया के सरकारी बलों ने देश के पश्चिम में आईएस के खिलाफ लड़ाई में बढ़त हासिल की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के दौरे पर हैं। उन्होंने ईरान के नेता आयतुल्लाह अल खमेनी से बातचीत की है। अनुमान है कि ये बातचीत सीरिया में हो रहे युद्ध पर केंद्रित रही। ईरान और रूस दोनों ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला हेमंत कुशवाहा ने। अब मुझे और हमारी बेहद खास अतिथि संपादक तस्लीमा नसरीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुक्रिया तस्लीमा।
धन्यवाद।